مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ یاسمین جمیل، پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ آج کی راؤنڈ ٹیبل میں ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو پاکستان میں دوسرے سیاسی، معاشی اور معاشرتی موضوعات میں اتنا دب جاتا ہے کہ اس پر بات کرنے کی نوبت ذرا کم کم ہی آتی ہے، لیکن یہ موضوع انتہائی سنجیدہ اور اہم ہے، اور اگر اس پر فوری توجہ نہ دی گئی تو یہ موضوع نہیں بلکہ پاکستان کے لیے ایک اہم مسئلہ بن جائے گا، جو لوگوں کی صحت، معیشت، معاشرت سے ہوتا ہوا آخر کار اس کی سیاست پر بھی اثر انداز ہوگا۔ یہ موضوع اور مستقبل کا ایک اہم مسئلہ ہے آب و ہوا کی تبدیلی اور ماحولیاتی آلودگی، جس پر اگر توجہ نہ دی گئی تو آنے والے دور میں یہ موضوع سیاست، معیشت، معاشرت سب پر ہی حاوی ہو جائے گا۔ پاکستان میں آب و ہوا کی تبدیلی کے اثرات، ان سے نمٹنے کے لیے گزشتہ حکومتوں کے اقدامات اور نئی پاکستانی حکومت کی پالیسی پر، اور اس پالیسی پر وائس آف امریکہ میں اپنی پہلی گفتگو کے لیے ہم نے آج کے پروگرام میں دعوت دی ہے آب و ہوا کے امور سے متعلق پاکستان کی وزیر مملکت زرداد گل کو، جو پاکستان میں تبدیلی لانے کے پی ٹی آئی کی حکومت کے عزم کے ساتھ تو وابستہ ہیں ہی، لیکن اب وہ پاکستان میں آب و ہوا کی تبدیلی کے منفی اثرات میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے بھی کوشاں ہو چکی ہیں۔ وہ اس سلسلے میں کیا کچھ کر رہی ہیں اور کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور ہم نے دعوت دی ہے اس شعبے میں سرگرم کچھ ماہرین اور سرگرم کارکنوں کو، جو انہیں اس تبدیلی کے سلسلے میں اپنے تجاویز، مشورے اور آراء پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون پر موجود ہیں بلوچستان کی، جی ہمارے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ، لیکن ٹھہریے، پہلے میں اپنے پینل کا تعارف کرا دوں جنہیں ہم نے آج کے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں، ہوں گے بلوچستان کی سابق نگران حکومت کے ہیلتھ اینڈ انوائرمنٹ کے وزیر فیض کاکڑ، بلوچستان کی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے موجودہ ڈائریکٹر جنرل طارق زہری، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کراچی کی ہیڈ آف کیمسٹری اینڈ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر نصرت خان، ماحولیات اور آب و ہوا کی تبدیلی پر مرکوز پرنٹ، ویب اور الیکٹرانک جرنلسٹ عافیہ السلام، جو پاکستان میں ماحولیات کے تحفظ سے متعلق پاکستان انٹرنیشنل ادارے IUCN پاکستان میں ایک رابطہ کار رہ چکی ہیں، اور ہمارے ساتھ شریک ہوں گی کلائمیٹ چینج پر سول سوسائٹی کے ایک ملکی نیٹورک کوئلیشن آف سول سوسائٹی آن کلائمیٹ چینج کی چیف ایگزیکٹو عائشہ خان میں شامل ہوں گی۔ اور اس وقت ہمارے پروڈیوسر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود ہیں بلوچستان کی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل طارق زہری، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماحولیات اور آب و ہوا کی تبدیلی پر مرکوز پرنٹ، ویب اور الیکٹرانک جرنلسٹ عافیہ السلام۔ تو گفتگو کا آغاز ہم عافیہ السلام آپ سے کریں گے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
اور السلام علیکم زہری صاحب، طارق زہری صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور ہم اپنے پینل کے باقی جو مہمان ہیں ان سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیونکہ آج سنا یہ گیا ہے کہ وہاں پر کچھ ٹیلی فون کا سلسلہ زیادہ صحیح نہیں ہے اور لائنیں نہیں مل رہی ہیں، اس لیے ابھی تک ہمارے ساتھ آپ صرف دو جو ہیں وہ شریک ہیں۔ تو ڈاکٹر عافیہ السلام، آپ بتائیے کہ پاکستان میں یہ جو مسئلہ ہے آب و ہوا کی تبدیلی کا، ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، گلوبل مسئلہ ہے، تو اس کی جو آب و ہوا کی تبدیلی ہے اس کے پاکستان پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اور پہلے یہ بتائیے کہ وہ اثرات کس قسم کی ہیں اور کن کن شعبوں پر پڑ رہے ہیں؟
جی پہلے تو ایک تصحیح کر دوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں صرف عافیہ سلام ہوں۔
ڈاکٹر نصرت خان ہے تو ان کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ۔ جی جی جی، عافیہ سلام۔
اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھیے، اب تو یہ کافی سالوں سے اس بات کا ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں جو متاثر شدہ ممالک ہیں ان کی لسٹ میں بہت اوپر ہے، ہم ٹاپ 10 کی لسٹ میں پچھلے 10 سال سے ہیں کم و بیش، لانگ ٹرم انڈیکس میں نمبر 7 ہے، شارٹ ٹرم میں ہم ایک دفعہ تھوڑا سا نیچے آ گئے ہیں کیونکہ پچھلے 2-3 سال سے اللہ کے فضل سے کوئی بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہوا، لیکن ہم بہت سے مختلف انداز سے تھریٹنڈ ہیں۔ پاکستان کو اسی لیے ایک ملٹی تھریٹ کنٹری کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم اگر دیکھیں تو ہماری جو ساحلی پٹی ہے جو تقریباً 9,900 کلومیٹر پہ پھیلی ہوئی ہے، وہاں سی لیول رائز سے ہمیں خطرہ ہے، जब समंदर की सतह बुलंद होने का, जो कि आपके पोलर आइस कैप के पिघलने की वजह से जो वॉल्यूम बढ़ेगा समंदर में पानी का, तो एक खदशा वो है। दूसरा आप जो गर्माइश है जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो हमारा पानी का जखीरा है, जो असल पानी का जखीरा है पाकिस्तान का, उनके पिघलने की वजह से हम उस जखीरे से दो तरह से मुतासर हो सकते हैं कि जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो उनकी वजह से शदीद सैलाब का सामना हो सकता है, और जब वो ग्लेशियर एक दफा पिघल जाते हैं और वहां से वो पानी का जखीरा खत्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद पानी के दूसरे और जराए पाकिस्तान के पास इतने नहीं हैं कि जिससे पूरे मुल्क जो है वो उसका गुजारा हो सके, तो फिर आप ड्राउट की तरफ चले जाते हैं। तो एक मसला नहीं है जिसपे हमें नजर रखने की जरूरत है।
और दूसरे जो मसाइल हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है, उस पर रोशनी डालेंगे डॉक्टर नुसरत खान, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुसरत खान साहिबा। जी कुछ
आपको मदद करने का मुझको इस अहम मौजू से।
आप इस वक्त किस जगह हैं? आप इस वक्त किस जगह हैं? या तो अपना स्पीकर ऑफ कर दीजिए क्योंकि आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। तो
अब बेहतर आ रही है आपको?
जी 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 अब बेहतर आ रही है। तो कुछ मौजूदात पर या कुछ असरात पर तो रोशनी डाली आफिया सलाम ने, आप बताइए। आप तो उष्णोग्राफी डिपार्टमेंट में एनवायरनमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट के शोबे की, तो आप बताइए कि पाकिस्तान में खास तौर पर जो समंदरी जिंदगी है उस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं मौसमियाती तब्दीली की वजह से, आबो हवा की तब्दीली की वजह से, और किन किन चीजों पर ये असरात जो हैं वो पड़ रहे हैं?
अच्छा, जिस तरह अभी आफिया इस्लाम साहब ने बताया कि जी सी लेवल राइज, ग्लेशियर मेल्टिंग, ठीक है, हम मेरे ख्याल उन ब्लेस्ड लोगों में से हैं जिसके पास समंदर है, और समंदर हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए और दुनिया की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत अहमियत का हामिल है। अच्छा, जहाँ अहमियत का हामिल है वहाँ उसकी वल्नरेबिलिटी भी बहुत है, मतलब उसकी आप भी जैसा अगर सी लेवल राइज की आप बात करते हैं तो जहाँ पे स्मॉल आइलैंड जो होते हैं, छोटे छोटे जो जजीरे हैं मालदीव और दूसरे मॉरिशस वगैरह, वो अंडर थ्रेट हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि अगर सी लेवल राइज होता है तो सी इंट्रूजन कहते हैं कि समंदर जो है वो जमीन की तरफ आना शुरू कर देता है, और जब वो जमीन पे आएगा तो आपके जो एग्रीकल्चर लैंड है वो स्लाइन हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये तो एक सी लेवल राइज का फिनोमेना है कि अगर समंदर का पानी, सतह समंदर बढ़ता है तो वो जमीन की तरफ आना शुरू होता है, इंट्रूड करता है जमीन के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि जब आपके क्लाइमेट चेंज हो रही है और हाई टेम्परेचर्स होते हैं तो आपके जो जमीन है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है। अब इंडस डेल्टा है तो उसकी जमीन में अगर मॉइस्चर, या एक तो इंडस रिवर का पानी कम हो गया, फिर टेम्परेचर्स बढ़ गए तो आपकी जो जमीन है वो धंसने लगती है। तो सी इंट्रूजन या लैंड सब्सिडेंस की बात होती है, जब जमीन एक तो लो लाइन एरिया है इंडस का और जमीन धंस भी रही है और सी वाटर इंट्रूड करता है, तो जो कोस्टल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बहुत अंडर थ्रेट आ जाती है। इस सिलसिले में NIO ने, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट सबमिट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इसकी स्टडी कराई जाए कि इंडस डेल्टा का जो थ्रेट्स हैं क्लाइमेट चेंज के। अच्छा, इसी तरह ये तो एक सी इंट्रूजन और एग्रीकल्चर इम्पैक्ट सी लेवल राइज का, या हाई टेम्परेचर और सी वाटर जो आपके फ्रेश वाटर स्कार्सिटी का हम पे क्या असर पड़ सकता है, एज ए समंदर पे क्या असर पड़ सकता है, उसका रोल क्या होगा या वो बिहेव कैसे करेगा। अच्छा, जो समंदर है उसमें अल्लाह ताला ने ऐसी खासियत रखी है कि वो बहुत सारी गैसेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। हम जो साफ ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं वो समंदर में से आती है, हमारा साफ पानी समंदर का एक जरिया है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज जब एटमॉस्फेयर में आती हैं तो वो समंदर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अच्छा, समंदर की भी अपनी एक कैपेसिटी है उस कार्बन डाइऑक्साइड को या ग्रीन हाउस गैसेज को एब्जॉर्ब करने की। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड समंदर में एब्जॉर्ब होती है तो समंदर का जो मिजाज है या वो एसिडिक हो जाता है, उसको हम जो फिनोमेना है उसको ओशन एसिडिफिकेशन कहते हैं। ये बहुत आम फहम की बात है कि अगर आप किसी चीज पे कोई कैल्शियम या कोई पत्थर के ऊपर अगर आप एसिड डालें तो घुलने टूटने लगता है, तो तो जितने कैलकुलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो अंडर थ्रेट हो जाते हैं, आपकी जो लाइफ है, जो इकोलॉजी है और उसके लिए थ्रेटनिंग हो जाती है। फिर ये तो आपके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो गए, दुनिया में इस पे एसिड एसिडिफिकेशन पे काम हो रहा है, उसके इम्पैक्ट पे काम हो रहा है, उसके असेसमेंट की जा रही है। दूसरा ये होता है कि जो कोस्टल इंस्टॉलेशन है, अगर आपका पानी एसिडिक हो गया तो उनकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है, तो ये भी एक बड़ा थ्रेट है जिस पे काम किया जा रहा है। जी
अच्छा, तो आप ये पाकिस्तान में जो समंदर है उसके बारे में क्या रिसर्च जो आपके इदारे ने की है, क्या नतीजे सामने आए हैं, किस हद तक उसमें पोल्यूशन है, किस हद तक उसमें जहरीले मादे शामिल हो चुके हैं, किस हद तक वो अभी हयात के लिए नुकसानदेह है और किस हद तक वो इंसानों पर असरअंदाज हो रहे हैं?
देखिए, पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है तो हमारी जो कोस्ट लाइन है वो 1000 किलोमीटर रफली कहते हैं, 9900 समथिंग कुछ। अच्छा, जब 1000 किलोमीटर है उसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, एक बलूचिस्तान और एक सिंध। ये कोई खास वो नहीं है, प्रोविंसेस के साथ जो लगती है उसके साथ उसको नाम दिया गया। बलूचिस्तान का हिस्सा बड़ा है तो वो बड़ी कोस्ट लाइन है। सिंध जो है उस पर तकरीबन 25% आप कह सकते हैं सिंध की कोस्ट लाइन होती है, अगर आप परसेंटेज में निकालें, वैसे देयर इज एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ इट। अच्छा, जब आप 25% से भी कम का हिस्सा सिंध का आता है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा इंडस डेल्टा एक मैंग्रोव इकोसिस्टम, बाकी रह जाती है कराची कोस्ट जो तकरीबन 70-72 किलोमीटर बनती है। अब ये 70-72 किलोमीटर जो है ये बेसिकली सेक्रीफाइस हो रही है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए और इसमें लोकलाइज किस्म के काफी पोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं। हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो कुछ थोड़ी पुरानी हैं, हमारी मैनेजमेंट सिस्टम्स के कुछ इश्यूज हैं, लेकिन ये जो ज्यादा इश्यू हैं इस किस्म के वो कराची कोस्ट का जो तकरीबन 72 किलोमीटर के करीब बनता है उसमें ज्यादा इश्यूज हैं। अब बाकी जो बलूचिस्तान कोस्ट है, कभी अगर आपका जाने का इत्तेफाक हो, इतना खूबसूरत नीला पानी उसका, मैंग्रोव इकोसिस्टम, यस उनको थ्रेट जैसे मैंने कहा कि वो लैंड सब्सिडेंस और सी वाटर इंट्रूजन का है, लेकिन पोल्यूशन अभी उसमें इंडस्ट्रियल इतनी ज्यादा नहीं है। यस कराची है।
तो बेहद शुक्रिया डॉक्टर नुज़हत खान। अब हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आज हमने, जैसा कि आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था, कि पाकिस्तान की वज़ीर मुमलकत बराए आबो हवा के उमूर जो हैं ज़रताज गुल, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं और हमारे प्रोग्राम में वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अपनी तफसीली पहली गुफ्तगू में आपको बताएंगी कि आबो हवा के हवाले से, आबो हवा के उमूर के हवाले से पाकिस्तान में वो क्या पॉलिसियाँ लाना चाह रही हैं और अब तक बहुत थोड़ा अर्सा हुआ उनको आए हुए, लेकिन जो कुछ वो कर चुकी हैं वो आपको बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम ज़रताज गुल साहिबा।
वालेकुम सलाम, थैंक यू वॉइस ऑफ अमेरिका, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
बेहद शुक्रिया। आपको हम देखते रहते हैं टेलीविजन के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में और हमने ये देखा कि न सिर्फ ये कि आप बोलती हैं बल्कि आप सुनती भी हैं, तो तो अभी हम आपको अपनी कुछ गुफ्तगू हम आपको सुनवा चुके हैं अपने कुछ माहरीन की। डॉक्टर नुज़हत खान हमारे साथ हैं और आफिया सलाम हैं और अभी कुछ देर के बाद कुछ और लोग भी हमारे साथ शामिल ले गुफ्तगू होंगे। तो आप बताइए कैसा लग रहा है वजीर बनने के बाद और खासतौर पर आबोहवा का शोभा अपने जिम्मे लेने का, ये शोभा आपके लिए नया है या इस पर कुछ आपकी पहले भी कोई रिसर्च है या आप इस शोभे की कुछ में कुछ दिलचस्पी रखती थी कि आपको बस इसलिए दे दिया कि आप डेरा गाजी खान से आपका ताल्लुक है तो वहाँ माहौल में पोल्यूशन है तो आप इस मसले पर ज्यादा तवज्जो देंगी? हाँ
नहीं, एक्चुअली बात ये कि जब हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तो हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारे जो क्राइसिस थे जिसको ओवरकम करना था, फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ ओवर बर्डन और हमें जो डैमेज इंस्टीट्यूशंस मिले थे उसके साथ हमें बहुत बड़ा एक जो पाकिस्तान को फेस कर रहा है वो इस वक्त क्लाइमेट चेंज था। और इससे पहले अगर सीरियसली अगर कहा जाए तो पाकिस्तान में इस तरीके से क्लाइमेट चेंज के ऊपर इसलिए काम नहीं हुआ कि हम लोग अभी तक ट्रेडिशनल थ्रेट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं और अभी हम ट्रेडिशनल पोर्टफोलियोज को ज्यादा जो है वो मिनिस्ट्रीज या मिनिस्टर्स पसंद करते हैं बजाय इसके कि वो बिल्कुल नए अनट्रेडिशनल जो पाकिस्तान
यही बिल्कुल जरताज गुल साहब, मैंने जरताज साहब मैंने प्रोग्राम के शुरू में यही बताया कि पाकिस्तान में सियासत और मईशत और माशरत इतनी ज्यादा डोमिनेट कर जाती है गुफ्तगू के मौजूदात में कि ये जो एक इंतहाई अहम मसला है ये आखिरकार ये सियासत पर असरअंदाज होकर रहेगा अगर इसको इस वक्त हल ना किया गया तो ये बताइए।
लेकिन बात ये की चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले पहले ही जब हमारे केपीके में गवर्नमेंट थी, जब हम लोगों ने बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट शुरू किया, तो सीरियसली में उस वक्त लोग इस बात के ऊपर हंसा करते थे कि दरख्त लगाना भी कोई चीज है, ये कौन सी बड़ी बात है। हालांकि उसके पीछे प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था। उस वक्त तो वो चेयरमैन थे पार्टी को, एमएनए थे, और वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे, लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम यह था कि जब जिस टाइम पाकिस्तान में 2010 में 2011 और 2012 में इस तरह के फ्लड्स आए जिसमें नौशहरा और ये पूरा दरियाए काबुल जब ये यहाँ पे उमड़ आया और पूरे के पूरे शहर डूब गए, और साउथ पंजाब जहाँ से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, इस तरीके से फ्लड्स आए कि आप यकीन करें कि उस वक्त बहुत ज्यादा रियलाइज करना शुरू कर दिया कि नेशनल डिजास्टर का मैनेजमेंट जो है या महकमा, वो तो पाकिस्तान में ऑलरेडी कॉम्पिटेंट नहीं था, काम नहीं कर रहा था। अभी भी मैं इस तरह की फैक्ट्रीज से मिलती हूँ जो काला उसमें सॉरी जो कश्मीर के अंदर जो है बालाकोट के अंदर जो अर्थक्वेक आया था, वो अभी तक लोगों को फैसिलिटेट नहीं गया, जो एफएक्टिव थे उनको अभी तक जो है वो इमदाद नहीं दी गई। अनफॉर्चुनेटली इस तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल पाकिस्तान में यूज होता है कि जब अर्थक्वेक आते हैं या नेचुरल डिजास्टर आते हैं, कलामिटी आती है, उसके लिए पाकिस्तान जो है वो तैयार नहीं है। तो जिस टाइम बिलियन ट्री सुनामी का केपीके के अंदर शुरू किया गया और फिर जब बहुत सारे पब्लिक इंडिकेटर्स आए कि जब लोगों को वाकई दरख्त जो है वो नजर आने शुरू हो गए और उनको समझ आने शुरू हो गई कि ये एक विजनरी लीडर है जो आगे आने वाली नस्लों का सोचता है, इलेक्शन का नहीं सोचता, तो फिर जब जिस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बने, उन्होंने फूड सिक्योरिटीज के ऊपर, वाटर स्ट्रेस्ड एरिया के ऊपर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर उनकी बहुत ज्यादा नजर थी। और फिर उनका एक जिसको आप कहते हैं सक्सेसफुल मॉडल जो था केपीके के बिलियन ट्री सुनामी को हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर अप्लाई करना है। लेकिन 18 अमेंडमेंट के बाद चूंकि हमारे पास डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स बहुत ज्यादा प्रोविंस के पास चली गई है और सेंटर के पास उतने ज्यादा पावर्स नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी गवर्नमेंट है और हम लोग हमारी बाकी प्रोविंसेज में भी गवर्नमेंट है, तो उनको ऑन बोर्ड हमारे लिए चीफ मिनिस्टर्स को और मिनिस्टर्स को बड़ा आसान हो गया है। तो बेसिकली जो मेरी मिनिस्ट्री है क्लाइमेट चेंज की, वो एक जिसको आप कह सकते हैं फैसिलिटेटर है। हम एक प्राइम मिनिस्टर का विजन है जिसमें हमने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान को जब शुरू किया तो ग्रीन के साथ हमने क्लीन भी शुरू किया, जिसके अंदर अब जब मैं ब्रीफिंग्स देती हूँ और जब मैं बहुत सारे ऐसे एरियाज में जाती हूँ तो पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज के साथ तो तकरीबन हर चीज ही रिलेटेड हो गई है। और अगर हमने इस अनट्रेडिशनल टेरर या वॉर के ऊपर काम न करना शुरू किया तो इट विल बी वेरी लेट। और ऑलरेडी ही इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा नुकसान भी उठा रहे हैं। और जहाँ पे मैं
हेलो, मेरा ख्याल है कि जरदाद गुल साहबा से हमारा रابطہ कट गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
जी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से राउंड टेबल गुफ्तगु कर रहे हैं पाकिस्तान में आबोहवा की तब्दीली के असरात पर। हमारे साथ माहरीन मौजूद हैं आबोहवा के शोबे के, और हमारे साथ वजीर मुमलिकत बराए क्लाइमेट चेंज जरताज गुल भी टेलीफोन पर मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगु कर रही थी, उनसे हमारा रابطہ मुनक़ता हो गया। अब गुफ्तगु में हम शामिल करेंगे बलोचिस्तान की साबिक निगरान हुकूमत के हेल्थ एंड एनवायरमेंट के वजीर फैज़ काकर साहब को। अस्सलाम वालेकुम फैज़ काकर साहब। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। और अभी जरताज गुल साहबा बता रही थी कि जो मौजूदा हुकूमत है पीटीआई की, वो किस हद तक तवज्जो दे रही है क्लाइमेट चेंज पर और उसके असरात पर और उसके असरात से निपटने के लिए उनके क्या प्रेफरेंसेज हैं। तो आपका दौरानिया, आपका दौर हुकूमत तो ज़ाहिर है मुख्तसर सा रहा था, लेकिन आप हमारे सुनने वालों को ये ज़रूर बताएंगे कि आपकी हुकूमत ने अपने दौर में और आपसे पहले की हुकूमतों ने माहौलियात के शोबे पर किस हद तक तवज्जो दी और क्या क्या ऐसे इकदाम किए जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान में माहौल की आलूदगी को या आबोहवा की तब्दीली के असरात से निमटने में फ़ायदा मंद साबित हुए।
अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कॉन्फ्रेंस में मुझे लिया है। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि मेरा बैकग्राउंड इस एनवायरमेंट में इस मिनिस्ट्री के हवाले से नहीं है, मैंने कोई 30 साल इस फील्ड में गुजारे हैं।
अच्छा,
तो मुझे सबसे पहले आई डोंट नो कि गुल साहिबा अभी ये बातें सुन सकती है नहीं, एनी سب سے بڑا جو انہوں نے بتایا کہ جس طرح لیسٹ پرائیورٹی فیڈرل لیول پہ انوائرمنٹ سیکٹر کو رکھا ہے, سیم سچویشن پہ بلوچستان بھی جو ہے وہ لیسٹ پرائیورٹی ہے ایک پروونس کے حوالے سے. تو اس حوالے سے جو پروونس میں ہمارے جو ایشوز ہیں وہ انوائرمنٹ کے وہ زیادہ سیویئر ہے, وہ سیویئر ہے. کانٹیکسٹ پہ سب سے پہلے یہ ریئلائزیشن کرنی چاہیے کہ بلوچستان جو ہے وہ 44% آف دا پاکستان ہے, اور اگر ہم اس کو میرین ایریا بھی انکلوڈ کریں تو یہ 62% آف پاکستان بنتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب کلائمیٹ چینج کے افیکٹ کی بات ہوگی تو یہ 62% جو ہے وہ افیکٹ اسی پہ آئے گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو اس لحاظ سے دیکھی جائے تو اس میں یہ پرابلم ہے کہ جہاں پہ بلوچستان میں پاورٹی 71% ہو جو لیسٹ ڈیولپڈ پروونس ہو, تو وہاں پہ تو بہت زیادہ پرابلم یہ ہے کہ انوائرمنٹل ایشوز کو کوئی کنسرن ہی نہیں کرتے ہیں. اب گل صاحبہ سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ کینڈی اگر پاکستان کو سرسبز کرنا چاہتے 62% کو وہ کنسیڈر کرے. آپ ایک بلوچستان کو اگر سرسبز کریں گے تو سارا پاکستان جو ہے وہ آدھا پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ سرسبز ہوگا. لیکن ہمارے ساتھ ایشو یہ کہ اس وقت پچھلے 30 سال سے ہم مسلسل ٹائم اینڈ اگین جو ہے ہم جو ڈراؤٹ کی صورت میں جو ہے ہم سفر کر رہے ہیں, اور اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں گوادر میں کوئٹہ میں اس طرح کی پینے کا پانی ایک بڑا پرابلم ہو گیا ہے. مطلب یہ کجا کہ ہم باقی انوائرمنٹل ایشوز کو دیکھ لیں, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو گرین ایریا ہے اس کا فلڈ کے حوالے سے اگر وہ سوات میں فلڈ آتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ افیکٹ جو ہے وہ ہمارے گرین بیلٹ میں سیرا آباد اور جعفر آباد پہ آتا ہے. ہمارے لوگ اس میں جو ہے وہ سارے ڈرب فلڈ افیکٹڈ ہو گئے تھے. ڈیزیز کی یہ صورتحال ہے کہ گانگو جیسے خطرناک وائرس جو ہے وہ اس وقت بھی سارے بلوچستان میں پھیلا ہوا ہے. تو جتنے بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کا افیکٹ ہے جتنا ایریا ہمارا ہے اسی لحاظ سے ہمارے شہر بھی اس میں بڑھ گئے. تو میرے یہاں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ خدا کے لیے اگر پاکستان کی بات ہو تو بلوچستان کے 5% 6% آبادی کو نہ دیکھا جائے, اس کی ایریا کو دیکھا جائے کہ یہ آدھے سے زیادہ پاکستان, اس کی ایشوز بھی آدھے سے زیادہ پاکستان کے.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں فیض کاکڑ صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو آپ کی نگران حکومت کچھ کر پائی اتنا زیادہ کہ بلوچستان پر توجہ دے پائی جو کہ 60% آف دا پاکستان کا ایریا ہے, اور نہ ہی اس سے پہلے کی حکومت نے کچھ ایسا کام کیا کہ بلوچستان کے شعبے میں آب و ہوا کی تبدیلی سے جو اثرات ہو رہے تھے ان سے نمٹ سکتی. زرتاج گل صاحبہ ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن زرتاج صاحبہ اس سے پیشتر کہ آپ اس کا جواب دیں. بلوچستان کی جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے اس کے ڈائریکٹر جنرل طارق زہری ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کیونکہ بات کی ہے فیض کاکڑ صاحب نے بلوچستان کی تو ہم ان سے پوچھیں گے. طارق زہری صاحب, کہ یہ جو آپ کی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے یہ کب بنی تھی, اور یہ اب تک ایسا کیا کچھ کر چکی ہے یا کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے بلوچستان میں کہ جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات بلوچستان میں خاص طور پر پڑ رہے ہیں یا پڑے ہیں ان کو نمٹا جائے؟ طارق زہری صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی جواب دیجیے ہمارے سوال کا.
جواب آپ کے سوال کا میں بڑا خوشی اور اس کے علاوہ کچھ 4-5 چھوٹے پوائنٹس ہیں وہ بھی ساتھ بتانا چاہوں گا.
ضرور ضرور. جی جی.
پاکستان میں انوائرمنٹ میں کام 90s میں شروع ہوا, اور فیڈرل کے ساتھ ساتھ باقی صوبوں میں بھی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز بنی.
تو آپ کے شعبے آپ کے بلوچستان میں پھر آپ کی جو ایجنسی بنی اس نے کیا کیا؟
جی میں آپ کو بتاتا ہوں, اب مجھے تھوڑا سا سنیے گا. نمبر ایک یہ کہ میں آپ کو دو طریقے سے بتاؤں گا, 8 اکتوبر 2018 سے پہلے اور 8 اکتوبر 2018 کے بعد, یعنی آئی پی سی سی رپورٹ جو آخری والی آئی ہے اس سے پہلے بھی ہمارا ایک بہت اچھا مومنٹم جس کے اوپر جو ہے منسٹر صاحب نے روشنی ڈالی کہ 10 بلین کا جو پروجیکٹ جو ہے اس نے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ پاکستانی انوائرمنٹ اور کلائمیٹ کے سین میں لے آئی ہے. آلریڈی لوگ بہت امید سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس نے وہ مومنٹم قائم کر دیا ہے جو کے پی میں ایز اے کیٹلسٹ پاکستان کے انوائرمنٹ کے سین میں بنایا تھا. ہمارا کوئی انوائرمنٹ کے کام میں ریکارڈ بہت اچھا نہیں ہے شاید ملک کا, اور ایسے لوگ جو کاپس پہ جاتے رہے ہیں سول سوسائٹی سے اور جرنلسٹ وغیرہ وہ بھی اس چیز کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ وہاں کوئی بہت اچھی پوزیشن نہیں ہوتی ہمارے نیریٹو کی کلائمیٹ کے. لیکن بہرحال یہ میں ساتھ ساتھ عرض کر دوں کہ 8 اکتوبر کے بعد جب سے آئی پی سی سی کی نئی رپورٹ آئی ہے ہمارے اسٹریٹجی میں کچھ چینج آیا ہے. ادھر میں یہ اس چیز کا ذکر ضرور کرتا چلوں گا कि मलिक अमीन असलम साहब जब से तशरीफ लाए हैं और उन्होंने सूबों की ईपीएस को और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करके एक जो है टीम स्पिरिट कायम की है, उसमें हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ऑल्दो के अगला ख्वाब बहुत ज्यादा दूर नहीं है।
तारिक साहब उम्मीदें नहीं, आप मुझे बताइए, ठोस बताइए क्या कुछ किया है और क्या कुछ आप करने वाले हैं।
मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। तो मैं ये बॉटम लाइन ये बताना चाहता हूँ कि इस साल इंशाल्लाह कॉप में जो पाकिस्तान की सिचुएशन पहले होती थी क्लाइमेट एक्शन में, उसके बरअक्स बहुत अच्छी होगी और जो है लोग इंस्पायर होंगे इससे। अब मैं आता हूँ कि आईपीसीसी रिपोर्ट से पहले और बाद की बात से। आईपीसीसी रिपोर्ट के आने से पहले हम सोच रहे थे, कुछ हमारे शॉर्ट टर्म एक्शन थे, कुछ मीडियम टर्म थे और कुछ लॉन्ग टर्म थे, और साथ ही साथ हम अपने लोकल अडेप्टेशन प्लान ऑफ एक्शन और मिटिगेशन प्लान यूनियन काउंसिल लेवल पे कम्युनिटीज के साथ बनाने के डायरेक्शन में चल पड़े थे। सूबाई हुकूमत की तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से, दोनों की तरफ से कवी फंडिंग के इम्कान बड़े रोशन है, अगले महीने दो में आपको क्लियर हो जाएगा। मलिक अमीन असलम साहब ने बड़ी कमिटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि इन चीजों को वो फंड करेंगे। हम उन्हीं की गाइडेंस के हिसाब से सूबे का प्लान बिल्कुल उनके विजन के मुताबिक चल रहा है। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, चार से पांच छोटी मोटी चीजें हैं। मैं आपको सिर्फ बिजली की एग्जाम्पल देता हूँ। बलूचिस्तान में इस वक्त 5-6 इनिशिएटिव्स पे काम जारी है ऑलरेडी, हवा से बिजली बनाने की, सोलर से बिजली बनाने की, वेस्ट टू एनर्जी, सॉलिड वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट गैसिफायर प्लांट के जरिए उससे बिजली बनाने के। तो ये चार पांच आइडियाज हमारे इस वक्त फ्लोट कर चुके हैं, इसमें हमारे साथ सरकार भी है, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर भी है, और जो है हम अपनी इकोनॉमी को ट्रांजिशन करके लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। उसके सिलसिले में इज्तमाई इकदाम और इंफरादी इकदाम दोनों के लिए हम तैयार भी हैं और स्टार्ट हो भी गया है। फैज काकर साहब जब हमारे वजीर थे तो क्वेटा में एक दिन के अंदर 12,000 स्कूल के बच्चे मोबिलाइज हुए, जिन्होंने बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के इंटरनेशनल स्लोगन को लेके क्वेटा में वॉक्स ऑर्गेनाइज किया और प्लास्टिक को उठाया। मिनिस्टर साहब ने खुद लीड किया इसको। तो ये इस चीज की गमाजी कर रहा है कि एक दिन में अगर हमारा 10-12,000 बच्चा बाहर निकल के इंटरनेशनल क्लाइमेट थीम के ऊपर एक्शन ले रहा है, तो इतना क्लाइमेट एक्शन मेरा ख्याल है, इससे पहले मैं सीखता रहा हूँ आशा खान साहिबा से, आफिया साहिबा को फॉलो करता रहता हूँ, नुजत साहिबा की रिपोर्टें पढ़ता रहता हूँ, इनसे सीखता रहता हूँ। मैं इनसे इनफैक्ट पूछना चाहूंगा कि जितना एक्साइटिंग काम का पाकिस्तान के क्लाइमेट थीम में आजकल हो रहा है, क्या इन्होंने पिछले हिस्ट्री में इनको इतनी तवज्जो के साथ क्लाइमेट पे एक्शन याद है? साथ ही मैं ये भी बताता जाऊंगा कि जो चीज हमें नहीं आती थी, हमारी सिविल सोसाइटी कोलेशन जिसको मैडम आयशा खान जिसकी चीफ एग्जीक्यूटिव है, इन्होंने आज से साल पहले हमें एजुकेट करना शुरू किया और हमें उस डायरेक्शन की तरफ ले जाना शुरू किया जो आज हम एक साल के बाद पहुंच गए हैं, जहां हम अपने लोकल अडेप्टेशन प्लान ऑफ एक्शन को बनाने के लिए अपनी फंडिंग पहले कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल दुनिया की तरफ से कोई हमें
फंडिंग देगा।
तो हम फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने पैसे इसमें डाल दिए हैं जी। आई विल फिनिश हियर।
तो बहुत शुक्रिया तारिक ज़हरी साहब, और आपने जिक्र किया आयशा खान साहिबा का, हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद हैं इस्लामाबाद से। क्लाइमेट चेंज पर सिविल सोसाइटी के एक मुल्कगीर जो नेटवर्क है, कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा खान साहिबा, जैसा कि अभी गुफ्तगू हो रही है और ये जाहिर हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो किसी एक मखसूस शोबे से मुंसलिक नहीं है, बल्कि बहुत सारे शोबे जो हैं इससे मुतासिर होते हैं और सब रिलेटेड हैं, और जब तक सब शोबों में बेहतरी ना लाई जाए तो क्लाइमेट चेंज पर काबू नहीं पाया जा सकता। तो आप बताइए कि आपने जो ये कोएलिशन बनाया है ये किस मकसद से बनाया, और ये प्रोग्राम से पहले आप बता रही थी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन पर असरअंदाज होने के लिए ये इत्तेहाद हुआ है, तो अब तक आपने क्या काम किया है आबोहवा को के मसाइल को हल करने के सिलसिले में और गवर्नमेंट को इस पर माइल करने के लिए कि वो इस शोबे में ज्यादा से ज्यादा काम करे या इन्वेस्ट करे?
जी यासमीन, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं बता दूं, सिविल सोसाइटी कोएलिशन फॉर क्लाइमेट चेंज हमारे इस वक्त 40 मेंबर हैं इस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जो काम करते हैं, और इसका आगाज शुरू हुआ था 2015 में जब पेरिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली थी, तो पाकिस्तान में फ्रेंच एम्बेसी ने एक मुहिम शुरू की कि वो सिविल सोसाइटी और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मोबिलाइज करें और एक एक प्लेटफॉर्म पे लाएं ताकि जो उनकी पेरिस की कॉन्फ्रेंस है उसका एजेंडा ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो कामयाब हो. तो हम भी उसमें शरीक थे काफी और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और उसके बाद हम में से कुछ ने ये फैसला किया कि ये अगर इतना अच्छा कामयाब तरीका है मोबिलाइज करके लोगों को यूनिफाई करके काम करने का, तो क्यों ना हम इस मोमेंटम को जारी रखें. और पाकिस्तान में कोई ऐसा क्लाइमेट सेक्रेटेरिएट नहीं है सिविल सोसाइटी के पास जो सिविल सोसाइटी की वॉइसेस को मोबिलाइज करे और उनको हुकूमती इदारों तक पहुंचाए. तो इसका बैकग्राउंड ये था. तो इसके बाद हमने इसको मोबिलाइज किया और मैं क्योंकि इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ तो हमने इस पे मुख्तलिफ उसमें डायमेंशन पे काम करना शुरू किया. एक तो एडवोकेसी और अवेयरनेस रेजिंग, क्योंकि पाकिस्तान में जो आम आवाम है उसको क्लाइमेट चेंज या ये जो मौसमियाती तब्दीली हो रही है ये क्यों हो रही है, इसका उनकी जात पे इनकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, इनको कोई आइडिया नहीं है और अभी भी बहुत कम है. तो एडवोकेसी और अवेयरनेस रेजिंग के हमने काफी सिलसिले शुरू किए जिसके जरिए हम लोगों को ये आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं. और इसमें हमने एक क्लाइमेट वेब पोर्टल भी बनाया है जिसका नाम है climateinfo.pk. इस पे अगर आप चले जाएं तो जितनी रिसर्च इस पे हुई है और जितनी पॉलिसीज क्लाइमेट चेंज की पाकिस्तान में बनी हैं वो सब वहाँ पे मौजूद हैं, ताकि आम आदमी भी अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहे कि ग्लोबली क्या हो रहा है और नेशनली क्या हो रहा है, कम अज कम उसके पास एक टूल हो जिसके जरिए वो ये इंफॉर्मेशन हासिल कर ले. फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ माजी में बहुत सी कॉन्फ्रेंसेज ज्वाइंट सेमिनार्स किए हैं जिसमें हम सिविल सोसाइटी के एक्सपर्ट्स, एकेडेमिया, प्राइवेट सेक्टर, मीडिया और पब्लिक सेक्टर के लोगों को बिठा के बातचीत कराते हैं ताकि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच हो और सब जो है वो एक ही डायरेक्शन में चलें, एक ही पेज पे आ जाएं. तो ये सिलसिला भी काफी कामयाब रहा है. हमने नेशनल कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जाने से पहले हमने प्री कॉप डायलॉग किए हैं कलेक्टिव ओनरशिप क्रिएट करने के. और जैसा कि आपको शायद इल्म होगा कि पाकिस्तान ने 2016 में ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप को भी ज्वाइन किया है. तो पाकिस्तान के क्योंकि जो मसले हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि अगर आप हमारी टोपोग्राफी को देखें तो हमारे पास ऊंचे तरीन पहाड़ भी हैं, माउंटेन इकोसिस्टम भी हैं, प्लेन्स भी हैं, फिर डेजर्ट भी हैं, फिर एरिड और सेमी एरिड एरियाज भी हैं और फिर कोस्टल एरियाज भी हैं. तो हर जगह का इको जोन बहुत मुख्तलिफ होता है, तो एक पॉलिसी जो है वो सब पे अप्लाई नहीं हो सकती. तो आपको प्लेस बेस्ड और पीपल सेंटर्ड पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं. तो हम प्रोविंसेस के साथ, जैसे कि अभी मिनिस्टर साहिबा भी कह रही थी कि 18वीं तरमीम के बाद ज्यादा जिम्मेदारी हर काम को करने की अब सूबों के पास है. सूबों के पास अगर आप जाते हैं तो जैसे तारिक जहरी साहब कह रहे हैं कि जब हम बलूचिस्तान गए तो हमें एहसास हुआ कि ना इनके पास वसाइल थे, ना इनके पास कैपेसिटी है, ना इनके पास टेक्नोलॉजी है. तो इनके साथ मिलके अगर हम काम करें तो सिनर्जी बिल्ड हो जाती है. तो अभी वक्त की जरूरत ये है कि सिविल सोसाइटी और एकेडेमिया और मीडिया और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर सब मिलके काम करें, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो कैलेमिटी या जो कैटेस्ट्रोफी आने वाली है मेरा ख्याल है उसका अभी लोगों को या हुकूमत
उसका इदराक नहीं है, इदारों में उसकी आगाही नहीं है. और ये आगाही फैलाने के लिए जी बेहद शुक्रिया आयशा साहबा, बेहद शुक्रिया आयशा खान साहबा. जरताज गुल साहबा, आपने सुनी है आयशा खान की भी बातें और हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट थे उनकी भी गुफ्तगू सुनी. हिर फिर कर या घूम फिर कर सिरा फिर मालियात पर जा पड़ता है. फंडिंग का मसला तो रहेगा और आप लेकिन हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि जरताज गुल साहबा से हमारा रब्ता फिर कट गया. तो आयशा साहबा और हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं वो यकीनन इस बात से एग्री करेंगे कि असल मसला है फंडिंग का, और फंड्स हासिल करना हुकूमत से और इदारों से और पॉलिसी में इसको जगह देना कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए जाएं, माहौलियाती जो खतरात हैं पाकिस्तान को लाइक वो की हैं. जब तक कि फंड्स नहीं होंगे तो बात आगे कैसे चलेगी. और हमारे साथ डॉक्टर नुजरत खान साहिबा आप मौजूद हैं. ڈاکٹر نظرت خان صاحبہ آپ ہماری بات سن رہے
ہیں جی
تو اب آپ بتائیے کہ کیا کیا جائے یہ تو بنیادی مسئلہ تو فنڈنگ کا ہے تو کیا امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں تو غیر سرکاری ادارے بھی اس سلسلے میں فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور بہت سی کمپنیاں ہیں جو اس بارے میں کام کرتی ہیں پاکستان میں کیا صورتحال ہے کہ اس اہم اور ایشو کے لیے فنڈ ریزنگ ہو یا حکومت پر زور دیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فنڈز مختص کرے اس مسئلے کے حل کے لیے جو آنے والے دور میں بڑا شدید صورت اختیار کر سکتا ہے؟
اچھا میں تھوڑی سی میری جو پرسپیکٹو ہے جہاں بات کرتے ہیں فنڈز کی پیسوں کی کمی کی ظاہر ہے ہمارا ڈیولپنگ کنٹری ہے اور ریسورسز کی کمی ہے بیسک ایجوکیشن مجھے جو جنہوں کا میں گورنمنٹ سیکٹر کو ڈیل کرتی ہوں اور کافی عرصے سے لوگوں کے ساتھ ایجوکیشن سے بھی میں کہیں پڑھاتی ہوں کراچی میں کہیے کہ یونیورسٹی کے ساتھ جو چیز مجھے فیل ہوتی ہے جو سب سے زیادہ مسنگ ہے پیسوں کے علاوہ وہ کمپٹنسی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیسے تو اپنی جگہ ضرورت ہے ایک کمپٹنسی کا بڑا فقدان ہے مطلب صحیح لوگ صحیح جگہ سمجھداری سے اویئرنیس لوگ کہتے ہیں عام پبلک کو اویئر کراؤ میں کہتی ہوں جو پالیسی میکرز ہیں جو پالیسیز بنا رہے ہیں جو امپلیمنٹ کراتے ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے اب جیسا اس وقت کافی پڑھی لکھی ہماری کابینہ ہے لوگ کافی اویئر ہیں ان کو چیزوں کی سمجھ ہے بوجھ ہے وہ یہ انیشیٹو لے رہے ہیں لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں لیکن بعض کیسز میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیسوں سے زیادہ کمپٹنسی کا بڑا فقدان ہے اب فرض کریں کہ میں ابھی میں نے ایک پروجیکٹ اپنے ایک اسٹوڈینٹ کو کرایا ہے کراچی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے کلائمیٹ چینج پہ ایک بہت چھوٹا سا پروجیکٹ ہے کیونکہ میں تھوڑا سا ڈریم کرتی ہوں میں چیزوں کو لوگ بات کرتے ہیں گرین بلڈنگز ہونی چاہیے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ گرین بلڈنگز کیوں ہونی چاہیے پہلا سوال یہی ہے کہ گرین بلڈنگ کا مطلب کیا ہے اور مقصد کیا ہے ہم کیوں سب گرین بلڈنگز کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کراچی کی ڈیولپمنٹ دیکھیں تو ہر وہ گھر جو مین روڈ پہ تھا 400-600 گز کا وہ کنورٹ ہو گیا ہائی رائز بلڈنگز میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انرجی ریکوائرمنٹ آپ کے ایک یونٹ کی تھی وہ ملٹی پلائی ہو گئی سیورل آرڈر آف میگنیٹیوڈ رائٹ جب وہ سیورل آرڈر آف میگنیٹیوڈ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ بھی ملٹی پلائی ہو گئی اب وہ چاہے پانی ہو بجلی ہو اور بجلی کا جو بننا ہے اور استعمال ہے وہ کافی حد تک کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ کرتا ہے اور دنیا میں یہ اسٹیٹس کی جاتی ہے کہ 40-50% جو انرجی کنزمپشن ہے وہ ہاؤس ہولڈ میں ہوتا ہے اور یہ کوانٹیفیکیشن اور اس چیز کو ایڈریس بہت کم کرتے ہیں تو کیا جب کراچی کی اب جو پلاننگ کی جائے جو ہائی رائز بلڈنگ کی اب تو وہ جو اسکائی اسکریپرز بن رہے ہیں 50-60 اسٹوریز کی بات کرتے ہیں اور وہ 3-4 اسٹوری اب اگر 600 یارڈ سے آپ 20 اسٹوریز بنا لیں گے تو انرجی کنزمپشن کو ملٹی پلائی کر دیجیے اب پھر جو نئے گھر بن رہے ہیں اس میں نہ روشنی کا کوئی پروویژن ہے نہ وینٹیلیشن کا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ لائٹیں آپ کی سارا دن جلتی ہیں پنکھوں کے بغیر آپ ایک منٹ نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ آپ کا پورا کیوبیکل بنے ہوئے ہیں ایئر کون لفٹیں ایلیویٹر اینڈ یہ سارا انرجی پریشر تو ہے ایک طرف انرجی کرائسس ہے اور دوسری طرف آپ انرجی پریشر بڑھا رہے ہیں تو یہ کون دیکھے گا اس کی بھی تو کہیں نہ کہیں کوئی کوانٹیفیکیشن اینڈ مینجمنٹ اینڈ پلاننگ ہونی چاہیے نا
اور یہی چیزیں ہیں جو جی جی بولیے ہم یہ اسی لیے ہم نے آج زرتاج گل صاحبہ کو مدعو کیا ہے اور ان سے ہمارا رابطہ پھر منقطع ہو گیا ہے تو وہ بھی آپ کی اس بات کو سن پاتی لیکن وہ اس بات کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے
ابھی میں نے
ڈاکٹر شکیل صغیر صاحب ڈاکٹر شکیل صغیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ماحولیات کے ماہر ہیں اور آغا خان میڈیکل یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر ہیں اور اسکاٹ میڈیکل گروپ کے سینئر ایڈوائزر انوائرمنٹل ٹاکسیکولوجسٹ ہیں تو کولمبس اوہایو سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون میں موجود ہیں چلیے ہم ان کو اپنے گفتگو میں شامل کر کے پوچھتے ہیں کہ یہاں امریکہ کے جو میں جو آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں اور پاکستان کو اس میں کیا کسی طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے السلام علیکم ڈاکٹر شکیل صغیر صاحب
وعلیکم السلام
بہت شکریہ بڑے شارٹ نوٹس پر آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی کچھ بتائیے آپ پاکستان میں بھی جاتے رہتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں تو ظاہر ہے کہ ماحولیات جو یہاں کا ماحول ہے वो काफ़ी बेहतर है और यहाँ पर इकदाम किए जाते हैं, तो क्या इस वक्त हमारे सुनने वालों को आप आगाही देंगे पाकिस्तान के इस मसले के बारे में कि आबोहवा की तब्दीली उन पर क्या असरअंदाज किस अंदाज में असरअंदाज हो रही है, और अगर इसको इस वक्त ना निपटा गया तो क्या नतायज बरामद हो सकते हैं, और क्या दूसरे मुल्कों में जो इस मसले से निपटने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं उनको किसी भी अंदाज में पाकिस्तान में उनका इतलाक किया जा सकता है?
ये पहली बात तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। आपने कई बातें की जो कि जिसका जवाब जो है वो सेपरेट देना होगा। पहले तो आपने बात की कि जाहिर है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो एनवायरनमेंट का काम है उसकी वो ऐसा है कि लॉज आर वेरी स्ट्रिंजेंट, और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पोल्यूशन नहीं रही है। जो हालात पाकिस्तान के हैं वो इन कंट्रीज में पहले किसी वक्त रह चुके हैं। मसलन ये कि अगर हम लंदन को ले लें तो लंदन की जो रिवर थेम्स है उसमें ये कंडीशन थी कि लोग वॉक नहीं कर सकते थे, मरे हुए जानवर और सारा फसला और सारी चीजें जो हैं वो शोर्स पे होती थी। तो बात यह है कि एक चीज जो कि मेरे जहन में आती है बार बार और मैं ये सोचता हूँ कि उसको उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो किस तरीके से हो सकती है। अगर आप देखें तो वी डोंट हैव टू लर्न बाय आवर ओन एक्सपीरियंस। हमारे पास जो चीजें जो एग्जाम्पल्स हैं हमको उसको इस्तेमाल करना चाहिए और उस चीज से दोबारा गुजरने की हमें जरूरत नहीं है कि हम उस स्टेज पे पहुंचे जहां से के रिटर्न लाजमी हो, उसके आगे हम जा नहीं सकते। तो कवानीन का इतलाक जो है वो बहुत जरूरी है इस सिलसिले में।
बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर बाकायदा पाबंदी है कि गाड़ियाँ जो हैं ख़ास तरीके से वो धुआं एक ख़ास मकदार से ज़्यादा धुआं निकाल सकती हैं। इसी तरह फैक्ट्रियाँ जो दूसरी हैं वहाँ पर भी ख़ास पाबंदी होती है कि वो जो फ़ज़ा में जहरीले मादे के एक ख़ास हद तक ही वो डाल सकती हैं और उसको भी साफ़ करके डालती हैं। इसी तरह कूड़े कचरे को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ पर बाकायदा न सिर्फ ये के कवानीन हैं बल्कि उन पर सख्ती से अमल भी होता है। तो आप समझते हैं कि ये सब चीज़ें हैं जो इनकी ज़रूरत पाकिस्तान में भी है और जो 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 जिसकी कमी है पाकिस्तान में कि कवानीन अगर हैं तो भी उन पर अमल दरामद आप कह रहे हैं कि होना ज़रूरी है?
दो चीज़ें, एक तो ये कि आपने बताया कि यहाँ जो है जो कवानीन हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और आपने सिर्फ इन्वायरमेंट की बात की कि गाड़ियों की, उसके अलावा बहुत सारी और सॉलिड वेस्ट की आपने बात की जो कि लैंडफिल और यहाँ तो रिसाइकलिंग इतनी नहीं होती है लेकिन यहाँ से चीज़ें जो हैं वो चाइना या पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज को भेज दिए जाते हैं जहाँ वो रिसाइकिल होता है। हमारा हम जिस हिसाब से रहते हैं पाकिस्तान में इन चीज़ों का इतलाक हो सकता है और बिल्कुल होना चाहिए, और ना सिर्फ ये कि होना चाहिए बल्कि ये लाजमी है हमारी सेहत के लिए। इसके हम उस नहज पे पहुंच गए हैं कि वहां से हम आगे सिर्फ और सिर्फ वो कंडीशन है जिसमें कि हमारे यहाँ सिर्फ बीमारियां और स्टंटेड ग्रोथ और बहुत सारी ऐसी चीजें, ह्यूमन हेल्थ, ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ बल्कि जो दूसरी चीजें हैं हमारे ग्रोथ क्रॉप्स पे इम्पेक्ट पड़ेगा, हमारे एनिमल्स और सारी चीजों पे ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो कवानीन जो है वो तो पाकिस्तान में भी हैं पेपर्स,
लेकिन उस पर आप कह रहे हैं कि अमल दरामद जो है जाहिर है।
अच्छा, अब अमल दरामद कैसे होगा? बात सारी ये है कि हम रूल्स बहुत अच्छे बना लेते हैं लेकिन उसको हमने अमल दरामद किस तरीके से उसको हमने करना है, उसमें कई चीजें ऐसी हैं कि जब तक आप एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जब तक आप कमर्शलाइज नहीं करेंगे, कोई आप इंसेंटिव नहीं देंगे, या तो इंसेंटिव दें या फिर आप इम्पोज करें ऐसे
ऐसे तरीके ऐसे अंदाज से करें कि उस पर अमल दरामद सख्ती की जाए ना और एहतसाब हो।
यह है कि आप उसके जो उस पर आप टैक्स लगाएं या ये कि आप उसको जो
और जो उस पर अमल दरामद ना करें।
मैं टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, टैक्स नहीं है जो मेरे जहन में है वो ये है कि आपको याद होगा कि जब शुरू में कोल्ड ड्रिंक्स होती थी वो शीशे की बोतल्स में आती थी, और जब वो बोतलें हम खरीदते थे तो हम बोतल के कोक खरीदते थे या पैप्सी खरीदते थे, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम खरीदते थे उसके हम 2 रुपए या जो ना कुछ रुपए जो है वो हम डिपॉजिट कर देते थे और हम बोतल घर ले जा सकते थे। जब हम बोतल वापस करते थे तो वो डिपॉजिट हमें वापस मिल जाता था। यहाँ आपने मैरीलैंड में देखा होगा कि जो है वो 5 सेंट लेते हैं हर एक,
मतलब आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जरूर कुछ ना कुछ या तो इंसेंटिव दें या जुर्माने लगाएं या सजा दें, रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों चीजें जरूरी हैं। कोई भी कानून उस वक्त तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता जब तक के उसके लिए कोई इंसेंटिव ना हो या उसके लिए कुछ सजा ना हो।
बेहद शुक्रिया। पनिशमेंट से काम नहीं हो सकता,
पनिशमेंट यही है ना, जुर्माना, जुर्माने आयद करें। और
नहीं, जुर्माने से कुछ भी नहीं होगा। जुर्माना जो है वो आप जो है वो मोटिवेट नहीं कर सकते, जुर्माना देके आप इंसेंटिव देके मोटिवेट कर सकते हैं या फिर ऐसा सिस्टम करें जिसमें के जैसे सपोज करें हम हमारी जो शॉपिंग बैग है, दुकान से दुकान वाला जब शॉपिंग बैग खरीद के लाता है तो वो जितने से अगर वो 1000 बैग खरीद रहा है तो वो उसके एक फिक्स अमाउंट उनको देता है, डिपॉजिट करता है इन एडिशन टू द प्राइस।
तो इंसेंटिव, आप कह रहे हैं कि इंसेंटिव बड़ा जरूरी है। बेहद शुक्रिया डॉक्टर शकील साहब, बेहद शुक्रिया शकील साहब। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, तो ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का और ये जो हमारा जो राउंड टेबल है इसको समेटेंगे। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में। जी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज की राउंड टेबल, मैं हूँ यास्मीन जमील, हमारे साथ प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम और हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान में आबोहवा की तब्दीली के असरात पर। डॉक्टर नुज़ुल खान और आफिया सलाम, आप दोनों से हम ये पूछेंगे कि क्या तजावीज़ पेश करेंगी जो आप समझती हैं कि उन्हें जो नई पाकिस्तान की हुकूमत है अपनी पॉलिसी में शामिल करे तो पाकिस्तान के माहौलियात को बेहतर बनाने और आबोहवा की तब्दीली के असरात से निपटने में हुकूमत को मदद मिलेगी और आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी कई एतबार से। तो पहले आफिया सलाम, आप मशवरे दीजिए या तजावीज़ दीजिए।
देखिए, पॉलिसीज तो पहले से बहुत मौजूद हैं। मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान जो है पॉलिसीज के मामले में तो बेहद खुद कफील है, बात उनको अप्लाई करने की है, उनको इम्प्लीमेंट करने की है। उसमें नेक नियति भी चाहिए। दूसरी बात ये कि वसाइल का आपने जिक्र किया, फिर सलाहियतों के फुकदान का जिक्र किया जैसे डॉक्टर नुज़ुल ने, ये तमाम बड़ी की एलिमेंट्स हैं और हमें उन गैप्स को दूर करना पड़ेगा। और एक मीडिया से ताल्लुक होने के हवाले से मेरा तो ये भी ख्याल है कि जैसे आयशा ने कहा, आगाही का भी बहुत फुकदान है और आगाही आम लोगों की बात नहीं हम कर रहे, जो जिन्होंने पॉलिसी के ऊपर अमल करवाना है और जिन्होंने उन पॉलिसीज पर अमल कराने के लिए वसाइल फराहम करने हैं, वहां पे भी आगाही का बड़ी हद तक हमने फुकदान देखा है। अब ये अच्छी बात है कि मलिक अमीन असलम जैसे लोग वहां मौजूद हैं जो वैसे ही माहौलियात के बारे में सब कुछ जानते हैं, इंटरनेशनली उनको सब पता है कि किस तरीके से ये तमाम बातें होती हैं। तो हमें उम्मीद, जैसे हमारे जो आपके बलूचिस्तान के ईपीए के डीजी ने कहा, हमें काफी उम्मीद है कि इससे बेहतरी आएगी। दूसरी बात ये कि हम सिर्फ जब हम बात करते हैं माहौलियाती तब्दीली की तो उसमें सिर्फ क्लाइमेट चेंज के हवाले से ना देखें, अब हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से देखना है। तो उस हर जिंदगी का हर शोभा जो है हमने उसको साथ लेके चलना है। क्लाइमेट चेंज ऑन इट्स ओन सिर्फ नहीं असरअंदाज हो रहा, उसकी वजह से जिंदगी का हर शोभा मुतासिर होगा। तो जब अब मुल्क का बजट बनता है उसमें जो हेल्थ का बजट है उसमें भी हम ये देखें कि क्या क्लाइमेट के रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जो हैं उसके लिए भी कोई मुख्तस किए गए हैं वसाइल। तो इस तरह से हमें एक होलिस्टिक किस्म की नजर रखनी पड़ेगी क्लाइमेट चेंज के ऊपर और क्लाइमेट चेंज के वजह से जिंदगी के दीगर तमाम जो शोबे हैं उन पे किस तरह से उनका असर होगा। और ये कोलैबोरेटिव, जिस तरह से आयशा ने कहा, ये काम कोलैबोरेटिवली ही होता है। आप जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी लेते हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी लेते हैं। बहुत बड़ा मुल्क है और मुल्क के हर इलाके के बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ मसाइल हैं, लेकिन जब वो एक टेबल पे बैठ के अपने अपनी मसाइल सामने लेकर आते हैं तो उसके हवाले से फिर वो उन वसाइल को एलोकेट किया जाता है। और इस किस्म के कोलैबोरेटिव काम जो है वो हुकूमत की सतह भी होने की जरूरत है। ये इस तरह की जो आपने जिस तरह से आज ये
मीडिया का रोल भी बहुत अहम है, उसमें
बहुत बहुत अहम है, बहुत कलीदी रोल है मीडिया का कि वो तमाम आवाजों को सामने लेकर आए।
डॉक्टर नुसरत खान साहब,
एक बहुत अच्छी कोशिश है आपकी।
जी कोशिश कर रही हूँ और ये आगाज किया है। इंशाल्लाह हम आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे कि लोगों में आगाही बढ़ाएं, खासतौर पर पाकिस्तान के हमारे सुनने वालों में, कि वो क्या करें कि आबो हवा की जो तब्दीली है उनके लिए जो खतरात लेकर आ रही है वो उसका मुकाबले के लिए अभी से तैयार हो जाएं। डॉक्टर नुसरत खान साहब, आप क्या कहेंगी इस हवाले से?
जी मैं थोड़ा सा, जो आफिया ने कहा, आपके डॉक्टर साहब ने कहा, आयशा ने कहा, और हम सब देखा, एक चीज तो हम सब ये जानते हैं कि हमें एक सस्टेनेबल अप्रोच की बहुत जरूरत है। हमें एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ, एक जिसे कहते ना, मैं क्योंकि प्लास्टिक का काम करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि फाइट अगेंस्ट द प्लास्टिक, राइट, द लाइफ सेविंग। तो इसी तरह को एक स्लोगन बनाए और हर एक इंडिविजुअल जहाँ मुल्क की सतह पर, गवर्नमेंट की सतह पर, इमरान खान साहब से लेके मलिक अमीन सिंह साहब हैं, सरताज गुल साहब हैं, ये लोग वो हैं जो रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फाइनेंशियल रिसोर्स की बात करें। हम जो मीडिया है, जिस तरह आप अपना रोल प्ले कर रही हैं, मैं कोशिश करती हूँ सबका इदारिया समझ के इस चीज को बताने की सेंसिटाइज करने की। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जो सिविलाइज सोसाइटी होती है उसमें हर ग्रुप जो है, हर सेक्टर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, और जब हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने लगते हैं तो कलेक्टिव एफर्ट के साथ एक अच्छा चेंज हमारे माशरे में आता है।
जी, और आयशा खान जो है, इन्होंने एक कोशिश आयशा खान कर रही है। जो आयशा खान, आप जल्दी से कुछ बताइए कि कोई आपका फ्यूचर का प्लान जो आप कर रही है अनकरीब इसी हवाले से।
प्लान बताने से पहले यासमीन, क्योंकि आपकी मैं कॉन्वर्सेशन सुन रही थी तो मैं एक दो कमेंट्स आपको देना चाहूँगी।
आपके पास डेढ़ मिनट है।
जब आप बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो पाकिस्तान ने अपना जो नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन का डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है पेरिस एग्रीमेंट के तहत, उसमें वो $40 बिलियन मांग रहा है इमिशन रिडक्शन के लिए, और वो 7 से 14 बिलियन पर एनम मांग रहा है एडेप्टेशन के लिए। तो अगर वो इतनी रकम मांग रहा है, उसका ये मतलब है कि हमें इतने पैसे की जरूरत है, तो ये मुमकिन नहीं पाकिस्तान के लिए अपने वसाइल से ये रकम पैदा करना। तो जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, हमें उनके थ्रू और जितनी और फाइनेंशियल विंडोज हैं, हमें उनके थ्रू ये पैसा हासिल करना होगा, वरना ये हमारे बस की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि आप अभी जब बात कर रही थी तो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज में भी कंफ्यूजन लोग कर देते हैं। एनवायरनमेंट एक अलग शोबा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो असरात हो रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड हैं और प्लैनेट का एक मखसूस कार्बन बजट है। अब वो कौन कंज्यूम करेगा, कितना कंज्यूम करेगा, और इस मेज पे प्लैनेट को लाने का जिम्मेदार कौन है? तो वो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो फंड की तरफ कंट्रीब्यूट जब करेंगी तो हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को वो फंड मिलेंगे ताकि हम अपनी अडेप्टिव रेजिलियंस को बढ़ा सकें।
तारिक जरी साहब, आप गुफ्तगु को समेटिए, आपके पास एक मिनट है, आप क्या कहेंगे इस वक्त?
मैं ये कहूंगा जी, इंशाल्लाह आने वाले कॉप में पाकिस्तान अपना अगले 5-7 साल का एक ऐसा बेहतरीन प्लान पेश कर देगा कि जो कि आसान कर देगा हमारे लिए GCF के फंड्स को रिसीव करना, बिकॉज इस वक्त हम शायद उनको रिसीव करने के लिए भी हमारा काफी काम रहता है। साथ में मैं ये कहूंगा कि क्लाइमेट चेंज का मसला जो आखिरी IPCC रिपोर्ट के बाद मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अब हमारे पास सिर्फ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म काम करने की गुंजाइश है, हमारे पास लॉन्ग टर्म का अब टाइम नहीं बचा। तो ये इस IPCC रिपोर्ट से हमें ये सीखना चाहिए कि अब लंबे प्लान नहीं बनाने, अब सिर्फ 5 से 8-10 साल के अंदर इतना ज्यादा काम करने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म पिक्चर इस आईपीसीसी रिपोर्ट के बाद ज्यादा ग्लूमी लगे।
बेहद शुक्रिया तारिक जहरी साहब। और अब हमारे प्रोग्राम को समेटने का वक्त हुआ। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की आज की राउंड टेबल में हमने गुफ्तगू की पाकिस्तान में आबोहवा की तब्दीली के असरात पर, और इसके साथ साथ हमने माहौलियात के बारे में भी गुफ्तगू की कि माहौल पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं इस तब्दीली के। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थी पाकिस्तान में आबोहवा के उमूर से मुतालिक वजीर जरताज गुल, हमारे साथ थे डॉक्टर शकील सगीर माहौलियात के माहिर और आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर कोलंबस से, और हमारे साथ थे बलोचिस्तान की साबिक निगरान हुकूमत के हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के वजीर फैज काकड़, हमारे साथ थे बलोचिस्तान के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल तारिक जहरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की डॉक्टर नुजत खान, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट वेब की जर्नलिस्ट आफिया सलाम और डॉक्टर नुजत खान। इन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ बेहद हाजिर है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मर्ज की जो तकलीफ देह होने के साथ साथ मरीज की निगहदाश्त करने वालों के लिए जज्बाती सतह पर भी नाकाबले बर्दाश्त होता है, और यह मर्ज है अल्जाइमर यानी याददाश्त के मुतासिर होने का आर्जा। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 65 वर्ष या इससे जायद उम्र रखने वाले 44 मिलियन अफराद डिमेंशिया या भूलने की बीमारी का शिकार हैं, और ये अल्जाइमर का सबसे आम सबब भी है। अल्जाइमर एक दिमागी कैफियत है जो बतदरीज याददाश्त के खो जाने का बायस बनती है, और इसकी वजह से सोच विचार का अमल, फैसला करने की कुव्वत और मसाइल से निमटने की सलाहियत मुतासिर होती है। अभी तक साइंसदान कोई ऐसी दवा दरियाफ्त नहीं कर सके जो बीमारी के इस अमल को रोक सके, लेकिन अमरीका में एक तहकीकी प्रोग्राम के तहत अल्जाइमर की रोकथाम की कोशिशें की जा रही हैं, और इसके लिए दिमाग में होने वाली तब्दीलियों को इब्तदाई मरहले में ही हदफ बनाया जाएगा जब याददाश्त और सोच विचार की सलाहियत मुतासिर न हुई हो। वॉइस ऑफ अमेरिका की डेबरा ब्लॉक की रिपोर्ट के मुताबिक 67 साल आईवी सीगल के वालिद 87 बरस की उम्र में अल्जाइमर्स में मुबतला होकर इंतकाल कर गए। सीगल ने यह जानते हुए कि यह बीमारी मौरूसी हो सकती है खुद को रजाकाराना तौर पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए पेश कर दिया।
He passed away from Alzheimer's disease in 2011.
मेरे वालिद की मौत 2011 में अल्जाइमर की वजह से हुई। यही वजह है कि इस बीमारी को मैं अपने दिल के करीब महसूस करती हूँ। यह मर्ज उनकी बेटी जेसिका लैंगबाम की तवज्जो का महवर भी है। वो फीनिक्स में बैनर अल्जाइमर इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं और दो ऐसी स्टडीज की क्यादत कर रही हैं जिनका मकसद अल्जाइमर की रोकथाम के तरीके दरियाफ्त करना है।
We're enrolling people who are healthy, who do not yet have memory and thinking problems.
जेसिका लैंगबाम का कहना है कि हम ऐसे लोगों को इस रिसर्च में शामिल कर रहे हैं जो सेहतमंद हैं और जो अभी तक याददाश्त और सोच के अमल के मुतासिर होने से महफूज हैं जिसका ताल्लुक अल्जाइमर से होता है। एक चिपकने वाला प्लैक एमिलाइड कहलाई जाने वाली एक प्रोटीन अल्जाइमर से मुतासिरा अफराद के दिमागों को क्लॉक कर देती है। अब ऐसे सेहतमंद लोगों में इस प्लैक को बनने से रोकने के अमल पर काम हो रहा है जो इस फहरिस्त में शामिल हैं और जिन्हें डिमेंशिया के लाहिक होने का खतरा है।
So this is a demonstration of a group that we know will develop Alzheimer's disease.
बैनर अल्जाइमर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर विलियम बर्क बताते हैं कि ये रिसर्च एक ऐसे ग्रुप पर की जा रही है जिनके बारे में मालूम है कि उन्हें अल्जाइमर का सामना होगा, और जब ये लोग इस उम्र को पहुंचते हैं जब उनमें इस मर्ज की अलामतें मुतवक्के होती हैं तो देखा जा सकता है कि एमिलॉयड पहले ही जमा हो चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के न्यूरोसाइंस सरबरा डॉक्टर एलिजियर मसीलिया का कहना है कि दिमाग के अंदर एमिलॉयड को जमा होने से रोकने में जितनी जल्दी कामयाबी मिलती है उतना ही इस बात का इम्कान बढ़ जाता है कि बेहतर नतायज हासिल किए जा सकेंगे। अमरीका और बाज़ दूसरे मुल्कों में वाक़ क्लिनिक अब बैनर अल्जाइमर इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और 60 साल से 75 साल की उम्र रखने वाले सेहतमंद अफराद को रिसर्च में शामिल किया जा रहा है। इन अफराद का वक्तन फवक्तन दिमागी मुआयना, हर 6 माह के बाद याददाश्त और सोच की सलाहियत की जाँच और कई बरसों तक तजुर्बाती अद्वियात या मसनू अद्वियात का इस्तेमाल कराना शामिल है। रजाकारों का मुआयना APO4 जीन के लिए भी किया जाता है। ये जीन अल्जाइमर के इम्कानात में इजाफा कर देती है।
एज इज द ग्रेटेस्ट रिस्क फैक्टर, द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग अल्जाइमर्स।
अल्जाइमर्स इंस्टीट्यूट की रिसर्चर जेसिका लैंगबाम कहती हैं कि उम्र सबसे बड़े रिस्क का आमिल होती है जो अल्जाइमर में पेशरफ्त का बायस बनती है। جبکہ دوسرا بڑا رسک اے پی او ای جین ہے. اس ریسرچ کے شرکا کے لیے جین میچ میں شامل ہونا ضروری ہے جو 55 سے 75 سال تک کی عمر کے ایسے افراد کا اندراج ہے جو الزائمر کے لیے کی جانے والی تحقیق میں خود کو رضاکار کے طور پر پیش کرتے ہیں لیکن ابھی ان کی ذہنی استعداد متاثر نہیں ہوئی. آئیوی سیگل نے اس اندراج کے لیے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی.
I want to do whatever I can to help the cause.
سیگل کا کہنا ہے کہ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. اب تک 70,000 سے زائد افراد یہ اندراج کرا چکے ہیں لیکن تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ الزائمر کی تحقیق کے لیے ابھی بھی لاکھوں رضاکار درکار ہیں. بیچے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, ڈبلو 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 ڈاٹ